आज का पहला पाठ हम नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से सुनेंगे। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 30 से आज का पहला पाठ लिया गया है। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य 21 में प्रभु का वचन कहता है, मैं स्वयं उसे अपने पास बुलाऊंगा और वह मेरे पास आएगा, क्योंकि कोई भी अपने आप मेरे पास आने का साहस नहीं कर सकता। कोई भी अपने आप मेरे पास आने का साहस नहीं कर सकता। ईश्वर इतने महान होते हैं, हम में से कोई भी उनके पास जाने का साहस नहीं कर सकता जब तक ईश्वर हमको आकर्षित नहीं करते हैं। यही प्रभु यीशु संत योहन के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 44 और 45 में हमें समझाते हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 44 और 45, कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा उसे आकर्षित नहीं करता। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों ने लिखा है, वे सब के सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो ईश्वर की शिक्षा सुनता है और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। प्रभु का वचन कहता है, जब तक पिता किसी को आकर्षित नहीं कर सकता करता जब तक पिता किसी को आकर्षित नहीं करता तब तक वो पिता पुत्र के पास नहीं आ सकता, यानी यीशु के पास नहीं आ सकता। और आगे ये भी कहा गया है, जो ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। जो ईश्वर की शिक्षा सुनता है उसे ग्रहण करता है वो मेरे पास आता है। वचन सुनना, वचन सुनना। रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 10:17 में वचन सुनने के बारे में प्रभु हमको समझाते हैं संत पौलुस के द्वारा। विश्वास सुनने से आता है, विश्वास सुनने से आता है, और जो सुनाया जाता है वो सुसमाचार है। तो वचन जो सुनता है वह प्रभु के पास आता है। संत याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य 4-10 में, संत याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य 4-10 में हम पढ़ते हैं, कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप ये नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना। जो संसार से मित्रता रखता है वो यीशु के पास, ईश्वर के पास नहीं जा सकता, ईश्वर के पास नहीं आ सकता। जो संसार का मित्र होना चाहता है वह ईश्वर का शत्रु बन जाता है। जो संसार का मित्र होना चाहता है वह ईश्वर का शत्रु बन जाता है, यानी जो संसार के पास जाता है वो ईश्वर के पास नहीं जाता। आगे वाक्य 5, क्या आप समझते हैं कि धर्मग्रंथ अकारण कहता है कि ईश्वर ने जिस आत्मा का हम में समावेश किया वह उसको अपने लिए ही चाहता है, इसीलिए वह हमें प्रचुर मात्रा में अनुग्रह देता है। जैसा कि धर्मग्रंथ में लिखा है, ईश्वर घमंडियों का विरोध करता किंतु विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है। आप लोग ईश्वर के अधीन रहे, शैतान का सामना करें और वह आपके पास से भाग जाएगा। यानी ईश्वर के पास आने के लिए हमें शैतान से दूर रहना है। इसलिए संत याकूब लोगों से कहते हैं, अगर आप लोग ईश्वर के पास आना चाहते हैं आपको संसार छोड़ना पड़ेगा, संसार से दूर भागना पड़ेगा और आपको शैतान से दूर भागना पड़ेगा। आप लोग ईश्वर के अधीन रहे, शैतान का सामना करें और वह आपके पास से भाग जाएगा। और आगे संत याकूब कहते हैं ईश्वर के पास आए और वह आपके पास आएगा। पापी अपने हाथ शुद्ध करे, कपटी अपना हृदय पवित्र करे। कपटी और बेईमान लोगों कहकर याकूब संध्या को हमने शुरू किया था। अभी कहते हैं आपको मैंने कपटी और बेईमान कहकर पुकारा, लेकिन आप इस प्रकार के जीवन से दूर हो सकते हैं। और इसीलिए संध्या को कहते हैं पापी अपने हाथ शुद्ध करे, कपटी अपना हृदय पवित्र करे, अपनी दुर्गति पहचान कर शोक मनाए और आंसू बहाए। आपकी हंसी शोक में और आपका आनंद विषाद में बदल जाए। प्रभु के सामने दीनहीन बने और वह आपको ऊंचा उठाएगा। कपटी भी पापी भी प्रभु के पास आ सकते हैं, लेकिन उन्हें विनम्र बनना पड़ेगा, ईश्वर के सामने दीनहीन बनना पड़ेगा। तो प्रभु का वचन कहता है जब तक ईश्वर हमें आकर्षित नहीं करता तब तक हम ईश्वर के पास नहीं आ सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को खुले निमंत्रण ईश्वर देते हैं, कुछ लोगों को खुले निमंत्रण ईश्वर देते हैं, तुम लोग मेरे पास आओ करके। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 28, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 28, धक्के मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब प्रभु कहते हैं जब तक पिता ईश्वर किसी को आकर्षित नहीं करता तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता, वही प्रभु कहते हैं धक्के मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों तुम सबके सब मेरे पास आओ, किसी को भी नहीं छोड़ता, तुम सबके सब मेरे पास आओ। खुला निमंत्रण है, खुला निमंत्रण देते हैं। अगर हम धक्के मांदे महसूस करते हैं अपने आप को तो हमारे लिए खुला निमंत्रण है। जब कभी हमें लगता है कि मेरा बोझ ज़्यादा हो गया, मैं इसको सहन नहीं कर सकता, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो गया, तो प्रभु उस समय हमें खुला निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं धक्के मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों तुम सबके सब, एक को भी नहीं छोड़ता, सबके सब मेरे पास आओ। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 14, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 14, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज इन जैसे लोगों का है। बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को भी प्रभु खुला निमंत्रण देते, बच्चों को मेरे पास आने दो। क्यों? क्योंकि वे निष्कलंक होते हैं, निष्कलंक होते हैं, उनमें पाप नहीं रहते। प्रभु कहते हैं बच्चों को मेरे पास आने दो। अब प्रभु को मालूम है कई लोग बच्चों को रोक देते हैं प्रभु के पास जाने से, इसलिए प्रभु लोगों से कहते हैं उनको मत रोको, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज इन जैसे लोगों का है। या संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 37, संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 7 वाक्य 37 में प्रभु कहते हैं, हम जानते हैं पर्व के अंतिम दिन और मुख्य दिन, आखिरी दिन, पर्व के आखिरी दिन, हम जानते हैं जब हम पर्व मनाते हैं कभी कभी कई दिन के लिए पर्व मनाते हैं, आखिरी दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन रहता है, आखिरी दिन जिसको हम बड़ा पर्व कहते हैं, आखिरी दिन सबसे ज़्यादा, जैसे हमारे बीच में जो पर्व मनाया जाता है नौ दिन तक नौवेना प्रार्थना सब करके, आखिरी दिन मुख्य याजक के रूप में हम बिशप स्वामी को या विशेष अतिथि को बुलाते हैं, आखिरी दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए प्रभु यीशु पर्व के आखिरी दिन मंदिर में खड़े होकर बहुत अच्छी बातें करते हैं, सबसे प्रमुख बातें करते हैं। और उस दिन प्रभु ने क्या कहा, पर्व के अंतिम दिन मुख्य दिन ईसा उठ खड़े हुए और उन्होंने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। जो प्यासे हैं उन सबको प्रभु बुलाते हैं, खुला निमंत्रण, फिर से खुला निमंत्रण देते हैं प्रभु। जो प्यासा है मेरे पास आओ। हमारे अंदर अगर ईश्वर के लिए प्यास है, ईश्वर को जाने के लिए जिज्ञासा है, ईश्वर को पाने के लिए अगर हमारे अंदर भूख है, अगर हम ईश्वर को ढूंढने वाले हैं तो प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ, तुम्हें भी निमंत्रण है। देखो कितने लोगों को प्रभु निमंत्रण देते हैं, धक्के मांदे लोगों को, बच्चों को प्रभु निमंत्रण देते हैं, फिर कहते हैं अगर आप लोग प्यासे हैं तो आओ। अगर आपके अंदर बेचैनी है और आप नहीं जानते हैं इस प्यास को कैसे बुझाएं, इस भूख को कैसे मिटाएं, तो मेरे पास आओ। मेरे पास अनंत जीवन की रोटी है, मेरे पास संजीवन जल है, मेरे पास आओ। यीशु के पास जाना, ईश्वर के पास जाना, ये हमें जानना और सीखना चाहिए। ये सीखने की बात है, ऐसा आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 22 से 33 में हम देखते हैं कि ये जो प्रभु के पास जाने की बात जो होती है वो उतनी आसान बात नहीं होती है। वहाँ पर कहा गया है कि यीशु एक दिन एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़ने के बाद, वहाँ पर प्रार्थना करने के बाद संध्या होने पर वे अकेले थे, और रात में जो शिष्य नाव में सवार होके जा रहे थे और वो नाव लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी, रात के चौदह पहर ईसा समुद्र पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। जब उन्होंने ईसा को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और ये कहते हुए कि कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्ला उठे। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढारस रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। पेत्रुस ने उत्तर दिया, प्रभु यदि आप ही है तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए, अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। हम ज़्यादातर इस घटनाक्रम को सुनते समय हम पानी के बारे में सोचते हैं, पानी पर चलना मुश्किल है हम सोचते हैं, लेकिन यीशु के पास जाना पानी पर चलने से भी ज़्यादा मुश्किल है, ये हम नहीं जानते। पानी पर चलना मुश्किल है हम जानते हैं, अगर हमसे कहा जाए तुम पानी पर चलो तो हम डरेंगे, हम चल नहीं पाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से प्रभु का वचन यहाँ पर ये बताता है यीशु के पास जाना पानी पर चलने से भी ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर प्रभु जब दर्शन देते हैं, समुद्र पर चलते हुए शिष्यों की ओर आते हैं, तो वहाँ से पेत्रुस कहते हैं, पेत्रुस को सोचना चाहिए था हम बच गए, अच्छा हुआ प्रभु आ गए, लेकिन प्रभु पेत्रुस इस बात को भी भूलकर कहते हैं, प्रभु अगर आप ही हैं तो मुझे आज्ञा दो कि मैं आपके पास आऊँ। पेत्रुस प्रभु के पास जाना चाहता है। पेत्रुस हम जानते हैं, पेत्रुस जितनी भी बार सुसमाचार में बोलते हैं तब अपनी जिज्ञासा को प्रकट करते हैं, अब भी पेत्रुस बोल रहे मैं तेरे पास आना चाहता हूँ और इसलिए आज्ञा दीजिए मैं तेरे पास आऊँ। तू मेरे पास आना चाहते हो, मैं भी तेरे पास आना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दो। तो पेत्रुस से यीशु कहते हैं आओ, आ जाओ, पेत्रुस को निमंत्रण देते। जब कभी हम प्रभु से कहते हैं हम तेरे पास आना चाहते हैं तो प्रभु हमसे कहेंगे आओ आओ आ जाओ, और पेत्रुस से भी प्रभु ने कहा आओ आ जाओ। पेत्रुस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। हम प्रभु के पास जाना चाहते हैं लेकिन दुनिया की चिंताओं में इतने फंसे रहते हैं कि हम प्रभु को के पास जाना चाहते हैं, बोलते हैं कि हम प्रभु के पास जाएंगे, लेकिन हमारी चिंताओं के कारण हम प्रभु के पास नहीं पहुंच पाते हैं। बीच में डूबने लगते हैं, बीच में डूबने लगते हैं, हम उधर उधर भड़कने लगते हैं, आंधी तूफान को देखते हैं, हमारे जीवन में आने वाले संकटों को, मुसीबतों को, ये सब देखकर हम घबरा जाते हैं और प्रभु के पास नहीं पहुंच पाते हैं, डूबने लगते हैं। लेकिन पेत्रुस से हमें सीखना चाहिए, ऐसे डूबते डूबते पेत्रुस चिल्ला उठते हैं, हे प्रभु मुझे बचाइए। हम भी अगर प्रभु के पास जाना चाहते हैं, ये उतना आसान नहीं है, लेकिन अगर हमारे जीवन में प्रभु के और हमारे रास्ते में कोई कठिनाई हम महसूस करते हैं, तो हमें प्रभु की ओर देखकर चिल्लाना चाहिए, हे प्रभु मुझे बचाइए, और प्रभु हमारे हाथों को थाम लेंगे और हम प्रभु के पास जाएंगे। शायद प्रभु ने उसके हाथ को पकड़कर थाम कर उसको अपने पास बुलाकर उसको आलिंगन किया होगा, उसके अपने साथ पाकर उसको भी खुशी आई, प्रभु को भी खुशी आई, प्रभु खुश हो गए, पेत्रुस भी खुश हो गए। हम सबको निमंत्रण देते हैं प्रभु ईश्वर आज। यौहन का सुसमाचार अध्याय 6:37 में ही प्रभु एक वादा करते हैं। यौहन का सुसमाचार अध्याय 6:37, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं टुकराऊंगा, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं टुकराऊंगा। प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत बड़ा वादा है, यीशु की प्रतिज्ञा है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं टुकराऊंगा। और ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा है, हम जानते हैं। आइए हम इस प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हुए प्रभु के पास जाएं। चले हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, परम शक्तिशाली ईश्वर से मुलाकात करें। इस मिसा बलिदान में हम प्रभु के पास आते हैं, उन्हीं प्रभु से निवेदन करें कि हमेशा प्रभु के पास जाने और प्रभु के पास रहने की कृपा हम में से हर एक व्यक्ति को प्राप्त हो।